आज ये 7 नंबर का श्लोक है। ये 7 नंबर के श्लोक में भगवान शंकराचार्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीव है इसका वास्तविक अस्तित्व परमात्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन जैसे आप गीता में पढ़ते हैं ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, मूल इसका ऊपर की तरफ है, शाखाएं नीचे की तरफ है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखता है, आपने देखा होगा। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी है, आप सेल्फी खींचते हैं तो सेल्फी सीधी आती है कि उल्टी आती है? उल्टी आती है। आप दर्पण पे जो अपना चेहरा देखते हैं वो सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है? सब उल्टा दिखता है। यदि उसमें सब उल्टा दिखता है तो तुम सीधे नहीं दिख सकते कभी। और आप बहुत गहराई से यदि ख्याल करोगे कभी, दर्पण में जो आपका फोटो दिखता है यदि आप उसको सीधा टीका लगाने की कोशिश करोगे तो शायद जिंदगी में कभी आपको टीका लगेगा ही नहीं। वो दिखता उधर है, आपको हाथ उल्टा करना पड़ता है। और आपका टीका लगा तो उसका अपने आप लग गया। लेकिन यदि आपने उसको लगाने की कोशिश करी, जिंदगी में कभी टीका न उसको लगेगा न तुमको लगेगा। हमारी भी कोशिश यही है। हम कहीं परमात्मा को कहीं दूर देख रहे हैं, परमात्मा को पूजने की, परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की, परमात्मा के दर्शन की जो शांति हमारे जीवन में होनी चाहिए वो शांति हमारे जीवन में नहीं होती है। हमने कभी आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, मीरा जी की एक बात आती है बहुत अच्छी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी ना दिसे सूरत तेरी। कृष्ण एक है, सूरत एक है, मूरत अनेक है। वो जो अनेक मूर्तियां हैं वो एक को खोजने का साधन है। लेकिन जो अविवेकी लोग हैं, मूर्ति पूजा उनके लिए जी का जंजाल है। वो अपने को धोखा देने में माहिर हैं। और जो व्यक्ति अपने को धोखा देता हो वो दूसरे को धोखा नहीं दे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी महाराज जी कुछ भागवत की बात बता रहे थे कि जो बलि देने में इसमें उसमें विश्वास करता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है। आप थोड़ा सोचो, एक बार कृष्ण के दर्शन हो जाएं, जीवन धन्य होता है। हम तो रोज कृष्ण के दर्शन करते हैं, पहले एक आदमी के पास में कभी जाता था, मैं जाता क्या, कभी बुलाता था, जाते थे कभी। उसने घर में बड़ा सुंदर कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया है और कभी थोड़ा गीत गोविंद गाता है, बड़ा अच्छा लगता है। इससे बड़ी आत्म प्रवंचना कुछ नहीं हो सकती। यदि बर्फ पड़ रही है और आपको ठंडी नहीं लग रही है, इसका मतलब आप धोखे में हैं। मैंने कभी आपको बताया कि भाई कोई आदमी है, उसका एक लड़का है, एक ही लड़का है, वो खो जाता है और वो अखबार में फोटो देता है उसकी। वो बोलता है जो मेरे इस लड़के को खोज लेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। अरबपति है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी फोटो देता है और एक तुम्हारा जैसा बुद्धिमान आदमी, क्योंकि प्रेमपुरी में आए वो बुद्धिमान ही से, वो एक टुकड़ा काट करके उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। बोलता क्यों आया? उसने कहा 10 करोड़ रुपए के लिए आया। बोला क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लड़के को ले आया हूं। मैंने कहा कहां मेरा लड़का है? उसने अखबार का टुकड़ा निकाला, बोला ये तेरा लड़का है। अच्छा ये लड़का है कि नहीं है? बोला है। तो फिर दे पैसा। तूने क्या बोला था? जो लड़के को ढूंढेगा उसको, मैं तो ढूंढा क्या, मैं तो लेके आ गया तेरे सामने तेरे लड़के को। अब आपको लगता है क्या उसको लड़के को 10 करोड़ रुपए मिलेगा? अब ये भी नहीं कह सकता मेरा लड़का ये नहीं है, लेकिन वो लड़के को याद दिलाने का एक साधन है। ऐसी जितनी मूर्तियां, जितने तुम तीर्थ करो, भर्तृहरि हरि ने लिखा है, भ्रांतम देश मनेक दुर्ग विषम, प्राप्तम न किंचित फलम, त्यक्त्वा जाति कुला विमान मुचितम, सेवा कृता निष्फला। मेरे को जिस पैसे वाला राजा था, जिसने जहां बताया वहां भगवान है, वहां गया, वो अमरनाथ गया, कैलाश गया, उज्जैन गया, वृंदावन गया, भगवान से मुलाकात नहीं हुई लेकिन पंडवों से मुलाकात हो गई। और पंडवों को ज्यादा करीब से देख लो तो भगवान के प्रति अनास्था होने लगती है। ये इतने करीब रहते हैं, इतने धूर्त हैं, तो भगवान कैसा होगा? उसने कहा प्राप्तम न किंचित फलम, कुछ नहीं पाया मैंने। वास्तविक में 10 करोड़ उसी को मिलेगा जो उसके लड़के को ले जाएगा पकड़ के। तो जितनी मूर्तियां हैं ये परमात्मा के स्मारक हैं। स्मारक मैंने वो ऐसा स्मारक नहीं, स्मारक शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है स्मरण दिलाने वाले। स्मारयति इति स्मारक का स्वार्थे कप है। ये परमात्मा का स्मरण दिलाते हैं, लेकिन हमारी जो धोखे देने की आदत है वो अपने से शुरू होती है। सबसे पहले धोखा हम अपने को देते हैं और हम ये निश्चय कर लेते हैं कि हमने तो परमात्मा के दर्शन कर लिए। अब बड़ी प्रेम से फिर खाते हैं, थाली वाली लगा करके, अब भोग वोग लग गया, अब खूब छप्पन भोग लग रहे हैं, खूब चकाचक। पहले से ही तिथि नियत, इस तारीख को छप्पन भोग है, पहले से कार्ड वार्ड छपके सब तैयार हैं, जैसे तुम्हारा भगवान तुम्हारे बाप का नौकर बैठा है कि जरूर आके खाएगा उस दिन वहां पे। आके कभी खाया उसने? अपने को खिलाने के तरीके हैं ये, और खिलाते नहीं, कहीं ना कहीं हम अपने को इतना गहरा धोखा देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर वो आदमी उसको अपने ऑफिस से भगा देता है बाहर, और जो आदमी ढूंढ के ले जाएगा उस आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो इतना ईमानदार है कि उसको पैसा उसके घर पे पहुंचा देगा। कृष्ण कहते हैं आत्मनेव आत्मना तुष्टा। जिस दिन वो दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाता है उस दिन उसके चेहरे से संतोष झलकता है। परीक्षित के पास जब सुखदेव पहुंचते हैं तो परीक्षित को ऐसा लगा कि इस आदमी ने वो पा लिया है, यदि उसका अनुभव मैं कर लूं तो मैं भय से मुक्त हो सकता हूं। उसी को बोलते हैं निज लाभ तुष्टः। उसके जीवन में जो संतोष है वो किसी पद पाने का नहीं, किसी प्रतिष्ठा पाने का नहीं, उसके जीवन में जो संतोष है वो तो स्वयं को जानने का है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन, अभी जो बता रहे हैं यहां पे जरा सब थोड़ी समझेंगे, यथा मृदि घटो नाम कनके कुंडला अभिधा सूक्तो रजत ख्याति जीव शब्द तथा परे। मैंने किसी भी काल में घड़े में घड़ा दिखे, कसोरा दिखे, कोई भी दिखे, लेकिन उसके मिट्टी होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। कर सकता है मिट्टी होने से, क्योंकि मिट्टी जो है उसका अभिन्न निपिंत उपादान कारण है। आपको कभी एक दृष्टांत देते हैं थोड़ा सा अभिन्न निमित्त उपादान कारण के बारे में। एक बार पांडव जंगल में जब थे, दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा, जाओ हमारे भाइयों का भी कल्याण करो। देखो गया दुर्वासा वहां, पांडव भोजन कर चुके थे, दुर्वासा के साथ में 10,000 मंडली थी वहां पर। महाभारत का बहुत प्यारा श्लोक का टुकड़ा है ये, जरा आप समझेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। दुर्वासा ने कहा देवी हम अभी स्नान करके आते हैं यमुना में, हमारे लिए भोजन तैयार करके रखना। अक्षय पात्र था उनके पास में। द्रौपदी बहुत परेशान हो गई, दुर्वासा के स्वभाव से जरा परिचित थी, और जीवन में जब विपत्ति आती है तो विपत्ति के समय आदमी किसको स्मरण करता है, अपनी आदमी की अपनी आस्था के ऊपर। वो उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया, श्री कृष्ण वहां उपस्थित होते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण का दृष्टांत है ये। अच्छा, उपस्थित जब होते हैं तो आते ही कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, देवी मेरे को थोड़ी आज भूख लग रही है थोड़ी सी। तो द्रौपदी ने कहा, आज लगता है सुबह सुबह भीम का मुंह देख लिया, जो भी मिल रहा है वो सारी दुनिया को खिलाने वाला भी आज भूखा ही आया, कड़ी मुश्किल की बात है, कुछ होगा। तो उस अक्षय पात्र पे कहीं पे कुछ टुकड़ा साग का कहते हैं रह गया था, ऐसा बोलते हैं। कभी सफाई करते समय बर्तन में कुछ टुकड़ा उकड़ा रह जाए तो काम वाली को डांटना नहीं, ये तब से ये परंपरा शुरू है, कब से। हाँ, उस समय डांट दोगे तो शाम को नहीं आएगी फिर, और मुसीबत खड़ी। अभी तो थोड़ा ही घिसना पड़ेगा, शाम को फिर पूरा ही घिसना पड़ेगा थोड़ा। उसने कहा ठीक है, वो साग का टुकड़ा खाते हैं तो कहते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, यहां पे कृष्ण जो है वो प्राण विद्या के जानकार थे, प्राण उपासक थे। जैसे ही कृष्ण ने वो साग खाया, अनेन विश्वात्मा में तृप्यताम संकल्प किया, सारी दुर्वासा की मंडली का पेट भर गया। दुर्वासा को डकार आया, वहां बड़ा सुंदर महाभारत में बड़ा प्यारा शब्द का प्रयोग किया है। भगवान ने भीम से कहा कि महाराज जी से कहिए कि प्रसाद तैयार हो रहा है, प्रसाद तैयार हो गया। वो सोचे डका रहा है, ये बात क्या है, खाया नहीं और पेट भर गया, ये बात क्या है। अब भीम ने कहा, महाराज जी चलो अभी भोजन तैयार है। महाभारतकार लिखते हैं, न तत्र सहाय अपेक्षते न तत्र तंतुर न च तंतुवाय। उसने कहा, कहीं कालिया तो नहीं आया उधर, बोले क्यों, न तत्र सहाय अपेक्षते न तत्र तंतुर न च तंतुवाय। तंतु मैंने धागे, तंतुबाई मैंने साड़ी बनाने वाला, न वहां धागे थे न कोई साड़ी बनाने वाला था, और दुशासन जैसे 10,000 हाथियों का बल रखने वाला आदमी उसके हाथ थक गए। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, नहीं तो जगत में वेदांत की प्रक्रिया आप समझते हैं, निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है। लेकिन यहां पे कृष्ण ही निमित्त कारण है, जुला है, और कृष्ण ही उपादान कारण है, क्योंकि क्या है, धागे भी वही हैं, धागे भी वही हैं और जुला भी वही हैं। तो धागा हो गया उपादान कारण और बनाने वाला हो गया, इसको बोलते हैं अभिन्न निमित्त उपादान। वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। तो उसने कहा कि ऐसा है, हमारी जयराम जी की बोल देना भैया, हम तो अब चले यहीं से, कहां से। तो परमात्मा जो है वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण इस जगत का है। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो परमात्मा इस जीव का है, तो यथा मृदि, सप्तमी का एक वचन है, जिस प्रकार से मिट्टी में घट है, ये तो बहुत पुराने दृष्टांत हो गए। अभी यदि नई दृष्टि से आप सोचें, आप एक व्यक्ति हो, किसी को तुम में पति दिख रहा है, किसी में तुम्हें दादा दिख रहा है, किसी में तुम्हें बाप दिख रहा है, किसी में तुम्हें नाना दिख रहा है, किसी में तुम्हें तुमको तुम बेटा दिख रहे हो, आखिरकार तुम हो कौन? आप में जो इतनी कल्पनाएं हो रही हैं, उस कल्पना के आधार में कोई परिवर्तन नहीं है। कल्पित में परिवर्तन है। जो तुम्हें भाई समझ रही है, वो रक्षाबंधन के दिन एक राखी बांधने का ख्वाब रखती है। जो तुम्हारी पत्नी है, वो कुछ और ख्वाब रखती है। तुम्हारा बेटा कुछ और ख्वाब रखता है। तुम्हारा पोता कुछ और ख्वाब रखता है। लेकिन जिससे ये आशाएं रखी जाती हैं, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। इसके लिए संत बताते हैं उपाय कि आपका ध्यान उस तरफ जाए। तो एक महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा हो गए, प्रज्ञाचक्षु थे वो। 1974 में उनका शरीर छूटा। स्वामी शरणानंद जी महाराज वो तीन चीज बताते थे साधक के लिए, सेवा, प्रेम और खोज। जो अन्नमय कोष है, जो बनी हुई चीज है, उसको आपकी सेवा की जरूरत है, कुछ चीज की जरूरत है। आप खाली बच्चों से प्रेम करके काम नहीं चला सकते, प्रेम के साथ में आपको खिलौना भी ले जाना पड़ेगा। खाली प्रेम नहीं, क्योंकि वहां अन्न में जुड़ा हुआ है। संसार से केवल प्रेम नहीं, संसार के साथ में सेवा भी चाहिए। सेवा का अर्थ मतलब, वो तो संत थे, इसने सेवा का प्रयोग किया, मैंने काम, उनको कुछ चाहिए, लेन देन का नाम ही संसार है। कुछ देने की भावना होनी चाहिए संसार में। संसार के रिश्ते तभी कायम रह सकते हैं जब आपकी कुछ देने की भावना हो। ऐसा नहीं है आप बोलो नहीं मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम, तो तुम्हारा प्रेम चाटेगा क्या? हो क्योंकि अन्नमय कोष है, वहां वस्तु और पदार्थ का महत्व है। फिर आई बात चिन्मय की। चिन्मय में वहां वस्तु का कोई महत्व नहीं है। तो परमात्मा से चाहिए प्रेम। तुम सोचो कि तुम कोई हार उससे चढ़ा दोगे उसको, अरे सारे हार तो उसी के हैं, उसी का पानी उसको चढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उसके पेड़ों में खिले हुए फूल पेड़ों को तोड़ के और उस पर चढ़ा दिए, उसे क्या फर्क पड़ता है? नहीं चढ़ाओ ऐसी बात नहीं है, लेकिन चढ़ाने से तुम सोचते हो ये खुश हो गया, ये तो जैसा तुम्हारा लड़का तुम्हारी दुकान से 1000 रुपए चुरा करके और तुमको 900 रुपए दे दे, ले भाई। है तो तुम्हारा ही, और वो भी अज्ञानी हो तो बात समझ दे, वो तो समझदार है। चिन्मय में वस्तु का कोई उपयोग नहीं है, चिन्मय में केवल भावना का उपयोग है। तो संसार में लेन और देन, क्योंकि अन्नमय कोष है। कबीर ने लिखा, भूखे भजन न हुई गोपाला, भूखे तो भजन भी नहीं होता, नहीं तो अपनी कंठी माला रख पास में। और परमात्मा के प्रति चाहिए केवल प्रेम, चिन्मय ताजा है वहां प्रेम, और तीसरी चीज क्या बताई, खोज, खोज अपनी, सेवा जगत की, प्रेम परमात्मा से और खोज स्वयं की। ये तीन चीजें जब जीवन में आने लगती हैं तो आदमी का चित्त शुद्ध होने लगता है। और शुद्ध चित्त की पहचान ये है कि कारण का अनुसंधान होने लगता है, जीवन के उद्देश्य का मूल्यांकन होने लगता है कि वास्तविक में हम आए क्यों हैं। एक पशु की तरह ही हमारा जीवन है कि इसके ऊपर भी कुछ है, ये खोज है। तो जैसे घट में आप मिट्टी को खोज लेते हैं, और हकीकत बात यह है कि खोजना खोजना क्या है, वो घट ही मिट्टी के रूप में जो है ना प्रतीत हो रहा है, मिट्टी ही घट के रूप में प्रतीत हो रही है। अच्छा, कनके कुंडलाभिदाह, कनक बोलते हैं सोने के लिए, सोने के लिए सुवर्ण जो है वही कुंडल के रूप में प्रणीत हो गया, लेकिन किसी भी हालत में उसके सुवर्ण पने का बाद नहीं होता। आप कितना भी पाप कर लो लेकिन आपको परमात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन पाप उस परमात्मा की अनुभूति नहीं होने देते, बस आपको खाली कोई जगाने वाला चाहिए, बस एक आपकी आकृति तोड़ने वाला कोई चाहिए, बस जहां आकृति टूटी हर कुंडल तो हर समय सोना ही था, उसका सुवर्णत्व तो कभी खत्म हुआ ही नहीं था। यदि वो अन्यथा बन जाता तब तो वापस लौटाना मुश्किल था। इसी प्रकार आगे बताते हैं, आगे दृष्टांत थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। सुक्तो ही रजत ख्याति, ख्याति मैंने प्रतीति, मिथ्या ज्ञान, ख्याति बोलते हैं मिथ्या ज्ञान के लिए, ख्याति छप प्रकथने धातु है। सुक्ति में रजत का दिखाई देना, भले ही वहां रजत दिखाई देता है लेकिन है वो सुक्ति ही। इसी प्रकार से जीव में भले ही कर्ता भोक्ता पना दिखाई देता हो लेकिन वास्तविक में उसमें कर्ता भोक्ता पना है नहीं, लेकिन जिस उपाधि के कारण ये मालूम पड़ते हैं उन उपाधियों से आपको अपने को अलग करना है। इसी के लिए जीवन में विवेक की जरूरत है। और जैसे ही आपने अपने को अलग किया उपाधि से, फिर उसके धर्म आपको छू नहीं सकते हैं। चलो आगे दृष्टांत और दे रहे हैं आचार्य, 61 नंबर का श्लोक। यथैव व्योमनि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तदवत् विश्वं चिदात्मनिः। यथैव व्योमनि नीलत्वं, भामतीकार ने भामती में दृष्टांत दिया बड़ा सुंदर। कभी आप उत्तरकाशी में चले जाओ, बंबई में भी पहले ठीक था, आसमान साफ हो, अमावस्या की रात हो, बाचस्पति मिश्र लिखते हैं ब्रह्मसूत्र की टीका में, नीलमणि कटाह इव, जैसे किसी ने नीलमणि से कढ़ाई बनाई हो और उस कढ़ाई के बीच में इतने मोटे मोटे हीरे लगा दिए हो। ऐसे जगमगाते हैं तारे, ऐसे वो नीलिमा दिखती है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आकाश नीला नहीं है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि आकाश कभी नीला है ही नहीं। उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? ब्रह्मसूत्र सुनते रहते हो यहां चार चार घंटे बैठ के, समय बर्बाद करते हो कि जिंदगी बर्बाद करते हो? कहा कि वो तल का मल है, वो जो नीलिमा है वो क्या है? तल का मल, पृथ्वी की छाया है, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता उसे। वो नीलिमा ऐसी दिखती है और बीच बीच में ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उसमें हीरे जड़ दिए हों, लेकिन उन्होंने जो कहा बात वहां, उन्होंने कहा वो नीलिमा एक काल्पनिक है नहीं। जितने आप आकाश की तरफ आगे बढ़ते चले जाओ, वो नीलिमा उतनी ही दूर होती चली जाती है। एक पहाड़ पे आप रहते हैं, सामने वाले पहाड़ पे ऐसा लगता है आपको वहां वो आकाश उस पहाड़ी को छू रहा है, लेकिन जब उस पहाड़ी पर आप पहुंचते हैं तो लगता है नहीं, जिस पहाड़ी से हम आए उस पहाड़ी से आकाश मिला हुआ है। इसके लिए वाचस्पति ने शब्द का प्रयोग किया तल मल नीलमणि कटा है नहीं, नीलिमा। एक है तो उर्दू का शायर निदा फाजली ने एक बात लिखी है, बहुत अच्छा लगा मेरे को उसका कारण। उसने कहा है सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना सब सांसों का इतिहास। ये जिंदगी क्या है? ये सांसों की हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री समझते हैं, इतिहास, सांसों का इतिहास है। और क्या है? जैसे बाबर था, हुमायूं था, ऐसी जिंदगी के बारे में बहुत गौर से देखो तो सांसों के इतिहास के सिवाय क्या है? और सांस भी अजब चीजें हैं, अपने आप चलती हैं, और ये चलती हैं तो जीवन चलता है। मेडिकल साइंस कहता है आजकल मशीन निकाला है, उंगली डालो उसमें बोलता है आपके अंदर ऑक्सीजन यदि 90 के ऊपर है तो समझ लो ठीक ठाक है, 90 के नीचे आए तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये जीवन तो सदियों से चल रहे हैं, ये मशीनें तो अभी आविष्कृत हुई हैं, 100-100 वर्ष आदमी जीता है और इस ऑक्सीजन का शरीर के अंदर इतना मेंटेन रखना उसको ये कौन रखता है? यही माया है, अघटित घटना पटेसी माया। कबीर से किसी ने कहा ना जब कोई मरा तो कबीर ने कहा यार मर गया ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये जीवित कैसे था इसी में आश्चर्य सबसे बड़ा है। तो है साधो ये तो मुर्दन के गांव, ये तो मुर्दों के गांव हैं, कैसे चलते फिरते हैं, कमाल की बात है। इसलिए बोलते हैं देखो यथैव व्योमनी नीलत्वम, आकाश में दिखाई देने वाली नीली मां, बड़े से बड़ा। और मुझे ऐसा लगता है खाली इतना ही नहीं है, यदि आप कैमरे से फोटो भी खींचो ना तो नीली फोटो आएगी। दर्पण में यदि देखो तो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखेगा कि नहीं? कबीर ने कहा दर्पण झूठ नहीं बोलते, दर्पण भी झूठ बोलते हैं, उसमें नीली मां दिखती है, वो दिखता है जो है नहीं, आंखों का भ्रम है। अच्छा आगे कहते हैं यथा नीरम मरुस्थले, रेगिस्तान में जैसे जल दिखता है। मैं कल आपको दृष्टांत दे रहा था, शायद बीच में छूट गया था वो, कि वो आदमी पानी का घड़ा ले जा रहा, यहीं तक शायद बताया था मैंने। अब उस आदमी ने, वो जो राजस्थान का मारवाड़ी था जिसने उसको बताया था कि वहां पानी नहीं होता तो पानी साथ में रखना, उसको गाली देना शुरू किया। उसने कहा मेरे को गधा बना दिया, इतना पानी मेरे को ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसको गुस्सा आया, उसने अपना घड़ा पटक दिया। लेकिन फिर जब गया वहां, तड़प तड़प के मरने को जब लगा, फिर वही आदमी उसको मिला। उसने कहा पानी पियोगे थोड़ा, मैं लाया हूं। वो कोई और नहीं था वो आदमी, ये कंधे पे जो है उसका नाम है, और मरी मरीचिका जो है वो नहीं है। तो जो नहीं है उसके लिए हम जो है उसको छोड़ देते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है कि जो है उसको हम ठुकरा देते हैं और जो नहीं है उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ये आत्मा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गूढ़ा केश सर्वभूता सयस्थिता ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, जो है। और बृहदारण्यक भारती कहे तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति थी, जो मंदिर की मूर्तियां होती हैं उनमें पंडित प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन ये मूर्तियां जितनी यहां बैठी हुई हैं इनमें तो साक्षात परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की है, इनमें परमात्मा है इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। इसलिए योग वशिष्ठ में लिखा है, भगवान रामचंद्र जी महाराज को वशिष्ठ जी महाराज बताते हैं येन केन उपायेन यस्य कस्यापि संतोषम जनेत राम तदेव ईश्वर पूजनम। यदि आप किसी गरीब की लड़की की शादी कराते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वही ईश्वर की पूजा है। एक गरीब का लड़का स्कूल में फीस नहीं भर सकता और उसकी फीस भर के दी आप उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, वशिष्ठ कहते हैं वही ईश्वर का पूजन है। ठाकुर जी के सामने इतना बड़ा थाल लगा दिया भोग का, वो तो देखता भी नहीं है, वो तो तुम्हारे ठाकुर जी नहीं लगाओ, ऐसा नहीं बोलता हूं। लेकिन वशिष्ठ कह रहे हैं येन केन उपायेन यस्य कस्यापि संतोषम जनेत राम तदेव ईश्वर, क्योंकि राम और वशिष्ठ का जब संपाद होता है वहां पर सत्य के अलावा असत्य की गुंजाइश नहीं रहती। गहनतम सत्य का प्रतिपादन वहां होता है, वहां असत्य की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है। और बाद बाकी जगह तो सब असत्य को ही घुसेड़ा जाता है, सत्य की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए बोलते हैं यथा नीरम मरुस्थले, मरुस्थल में दिखाई देने वाला नीर, मरु के सिवाय कुछ है नहीं। पुरुषत्व तथा स्थाण, ठूंढ में जैसे कोई पुरुष दिखा, पुरुष दिखा तो एक कोई कमजोर दिल वाला था उसको भूत दिख गया, और एक तुम्हारे जैसे सेठ था दोनों जेब में नोट भरा था उसको वो चोर दिखने लग गया, कौन ठूंठ। अब वो इसकी जेब में पैसा इसलिए उसको चोर दिख रहा है, वो पैसा चारों तरफ चोर पैदा कर देता है, भय चारों तरफ भूत पैदा कर देता है। ये कहीं होते नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही होते हैं, ये बाहर प्रकट कर देते हैं। अच्छा आगे आचार्य लिखते हैं तदवद विश्वम चिदात्मनि। हकीकत बात यह है, ये सारा जितना खेल है ये मैं के ऊपर चल रहा है। यदि मैं नहीं फिर कुछ नहीं, बस। मैंने कभी बताया आपको, हमने देखा बहुत बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े विद्वान, कर्पात्री जी महाराज जी की मृत्यु मैंने देखी, उस समय मैं काशी में था, कांदीबली वाले महाराज को देखा हरिद्वार में था, जैसे ही शरीर से जीव चला जाता है सब जितने सलाह देने वाले होते हैं वो सब कहते हैं जल्दी करो, बस सारे व्यवहार। जिस आत्मा की वजह से आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, इतनी इज्जत है, उस आत्मा की तरफ थोड़ा तो ध्यान दो। इसलिए कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में सबसे पहले यही बताया कि महान पुरुष वही है आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदुच्यते हे अर्जुन, जो अपने से संतुष्ट है। हम कभी अपने को जानने की कोशिश करते नहीं हैं, दूसरे से हमें फुर्सत नहीं है, उलझनों में ऐसे उलझे रहते हैं। एक श्लोक और है तो प्रसंग अलग हो जाएगा थोड़ा सा। यथैव सुन्ने बैतालो गंधर्वाणां पुरम यथा यथा काशे द्विचंद्रत्वं तदवत् सत्ये जगत् स्थितिः। जैसे शून्य में बैताल दिखाई देता है, बैताल मैंने छाया, भ्रम दिखता है कभी आपको, लग छाया दिखाई देती है आकाश में, गंधर्वाणां पुरम यथा, और जैसे बादलों में गंधर्वों का नगर दिखाई देता है वो कल्पना के हिसाब से दिखाई देता है, वो तो कुछ होता होता कुछ नहीं है, वो कल्पना दिखाता। यथा आकाशे द्विचंद्रत्वम, और आकाश में एक चांद में दो चांद नजर आते हैं, उसी प्रकार से तदवत सत्ये, सत्य में, सत्य जो है ना सप्तमी का एक वचन है, सत्य में जगत की स्थिति है। जगत जो है ना प्रतीत होता है, तो इसीलिए प्रतीत होता है कि सत्य दिखाई नहीं देता। जब आदमी बहुत उसमें उसने गोकर्ण ने अपने पिताजी को कहा क्या करना चाहिए, अभी उसने एक बहुत अच्छी बात कही, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। हे आत्मदेव, धर्मम भजस्व सततम, अब उन चीजों को भजो जिसने सब कुछ धारण किया। धारणा धर्म इत्याहु, जिसने धारण किया है वो कौन है? वही आत्मदेव है। आश्चर्य की बात है, क्या उस आत्मा का कमाल कैसा गजब का है, देख लीजिए। सारा उसमें बृहदारण्यक में लिखा है, एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र मसौ धाता। ये गार्गी उस परमात्मा का प्रशासन देखो सुरासद, कमाल का प्रशासन है। समय पे सब कुछ होता है, इतना अनुशासन है। वो जो सत्य है, भागवत जी में भी आप इतने दिनों से भागवत श्रवण करते हैं, व्यास जी महाराज ने जब मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया है। आश्चर्य की बात लगती है, वहां क्या कहा पहला श्लोक अंतिम पंक्ति याद है, सत्यम परम धीमही, और शुरुआत किया जन्माद्यस्य यतः अन्वय तरतस चार्थे सुविज्ञ स्वराट, कृपा की थोड़ी कृपा, अनुग्रह किया। और मैंने आपको थोड़ा उल्लेख किया था, अनुग्रह में पात्रता का विचार नहीं किया जाता, अनुग्रह में केवल व्यक्ति का समर्पण देखा जाता है बस। और अनुग्रह करने वाले जो महापुरुष होते हैं वो व्यक्ति को पात्र भी बना देते हैं, और उस पात्र में ज्ञान का दान भी दे देते हैं। जनक पात्र था, उस पात्र में याज्ञवल्क्य ने ज्ञान डाला, लेकिन पात्र बनने के लिए जनक ने स्वयं कठोर मेहनत की थी, कठोर साधना की थी, और कठोर साधना करने के बाद जनक पात्र बना, और उस पात्र में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने, अष्टावक्र जी महाराज ने उसमें ज्ञान प्रदान किया, और उनको बड़ी खुशी हुई हमने सही पात्र में डाला। लेकिन जब परीक्षित के ऊपर आप विचार करते हैं, सुखदेव जी महाराज ने अपनी कृपा से, अपनी करुणा से परीक्षित को पात्र बनाया। और अपनी बुद्धि से उसमें ज्ञान डाला, तो उसको पात्री भी बनाया और उसमें ज्ञान भी भरा। इसलिए आपको मैंने बताया कि भागवत ब्रह्मसूत्र की व्याख्या होने के बावजूद भी ब्रह्मसूत्र के दूसरे सूत्र से प्रारंभ किया गया, पहले सूत्र से प्रारंभ नहीं किया गया, क्योंकि पहले सूत्र के अंदर पात्र का निरूप अधिकारी का निरूपण है। ब्रह्मसूत्र पहला सूत्र क्या है? हाँ, तो उसमें पहले सूत्र में अधिकारी का निरूपण है, लेकिन भागवत में दूसरे सूत्र से प्रारंभ किया गया। तो कृपा होती है तो महापुरुष हमें पात्र भी बनाते हैं, और पात्र बनाने के बाद उस पात्र में जो ज्ञान देना है उस ज्ञान को भी देते हैं। इस प्रकार से 61 नंबर के सूत्र जो है ना हो गए। आगे की चर्चा कल।